हिस्कियाल 28वां बाब शाह सूर की सजा।
और मैंने खुदावंद का कलमा पाया, उसने कहा कि ए इब्ने बशर, सूर के रईस से कह दे कि मालिक खुदावंद यूं फरमाता है, चूंकि तेरे दिल में तकब्बुर समाया हुआ है और तूने कहा है कि मैं खुदा हूं और समुंदर के वस्त में खुदा की मसनंद पर बैठा हुआ हूं, और तूने अपना दिल खुदा का दिल समझा, हालांकि तू खुदा नहीं बल्कि महज इंसान है। क्या तू दानील से ज्यादा दानिशमंद नहीं? कोई साहिब हिकमत नहीं जो तेरे बराबर हो। तूने अपनी दानिश और फहम से अपने लिए दौलत पैदा की और अपने खजानों में सोना और चांदी जमा किए हैं। तूने अपनी बड़ी हिकमत से तजारत कर करके अपनी दौलत बढ़ाई है, और तेरी दौलत की वजह से तेरा दिल मुतकब्बिर हो गया है। इसलिए मालिक खुदावंद यूं फरमाता है, चूंकि तूने अपना दिल खुदा का दिल समझा है, इसलिए देख, मैं तुझ पर ऐसे अजनबियों को जो कौमों में ज्यादा जालिम हैं लाऊंगा। वो तेरी दानिश की खूबी पर अपनी तलवार खींचेंगे और तेरे जमाल को बर्बाद कर देंगे। वो तुझे घड़े में धकेल देंगे और तू समुंदर के वस्त में मकतूलों की मौत मर जाएगा। क्या तू अपने कातिल के सामने कहेगा कि मैं खुदा हूं, हालांकि तू अपने मार डालने वाले के हाथ में खुदा नहीं बल्कि इंसान है। तू अजनबियों के हाथ से ना मखतूनों की मौत मर जाएगा, क्योंकि मैंने ये कहा है। मालिक खुदावंद का फरमान यूं ही है। और मैंने खुदावंद का कलमा पाया, उसने कहा कि ऐ इब्ने बशर, शाह सूर पर मरसिया पढ़ और उसके हक में कह दे कि मालिक खुदावंद यूं फरमाता है, ऐ खात्मे कमाल और हुस्न कामिल, तू खुदा के बाग अदन में था, हर एक कीमती पत्थर तेरी पोशिश के लिए था, मसलन लाल, याकूत अस्फर, यशम, जबरजद, जजा, यशब, नीलम, शबे चराग, जमरद, और ये सब सोने में जड़कर नगीना बंदी की सनत से तेरे लिए तैयार किए गए। तेरी पदाइश के दिन मैंने तुझे करोबियों के दरमियान रखा, तू खुदा के कोहे मुकद्दस पर था, तू आतशी पत्थरों के दरमियान चलता फिरता था। तू अपनी पैदाइश के दिन ही से अपनी रविश में कामिल था, जब तक के तुझ में नाराजगी ना पाई गई, और तेरी तजारत की कसरत के सबब से तुझ में जुल्म ना भर गया और तूने गुनाह ना किया। तब मैंने तुझे नापाक समझकर देवताओं के पहाड़ पर से फेंक दिया, और मुहाफिज करूबी ने तुझे आतशी पत्थरों के दरमियान से दूर कर दिया। तेरा दिल तेरे हुस्न के बाइस मगरूर हो गया है, और तूने अपनी खूबसूरती के लिए अपनी हिकमत बगाड़ दी है। मैंने तुझे जमीन पर पटक दिया है और बादशाहों के सामने रखा है ताकि वो तुझ पर नजर करें। तूने अपनी बदी की कसरत और अपनी तजारत की नाराजगी से अपनी पाकीजगी को नापाक कर दिया है। اس لیے میں نے تیرے اندر سے آگ نکالی ہے جو تجھے بھسم کر گئی ہے، اور میں نے تجھے تیرے سب دیکھنے والوں کی آنکھوں کے سامنے زمین پر راکھ کر دیا ہے۔ جو قوموں میں تجھے پہچانتے تھے وہ سب تجھ پر حیرت زدہ ہو گئے ہیں۔ تو جائے عبرت ٹھہرا ہے اور پھر ابد تک کبھی نہ ہوگا۔
سدون کے خلاف۔ اور میں نے خداوند کا کلمہ پایا، اس نے کہا کہ اے ابن بشر، سدون کی طرف متوجہ ہو کر اس کے خلاف نبوت کر اور کہہ دے کہ مالک خداوند یوں فرماتا ہے، اے سدون، میں تیرے خلاف ہوں اور میں تیرے درمیان اپنی تمجید کراؤں گا، اور جب میں اس میں عدالت جاری کروں گا اور اس میں تقدیس پاؤں گا تو معلوم ہو جائے گا کہ میں ہی خداوند ہوں، اور میں اس پر وبا اور اس کی سڑکوں میں خون ریزی نازل کروں گا، اور اس کے مقتول اس تلوار سے گریں گے جو چاروں طرف اس پر چلے گی، اور معلوم ہو جائے گا کہ میں ہی خداوند ہوں۔ بعد ازاں اسرائیل کے گھرانے کے لیے ان میں سے جو اس کے ارد گرد ہیں اور اس کی تحقیر کرتے ہیں، کسی کی طرف سے چپنے والا کانٹا اور چھیدنے والا خار نہ ہوگا، اور وہ جانیں گے کہ میں ہی خداوند ہوں۔ مالک خداوند یوں فرماتا ہے، جب میں ان قوموں کے درمیان سے اسرائیل کے گھرانے کو جمع کروں گا جن میں وہ پراگندہ ہو گئے ہوئے ہیں، تو میں قوموں کے روبرو ان میں تقدیس پاؤں گا، اور وہ اپنے اس ملک میں بسیں گے جو میں نے اپنے بندے یعقوب کو دیا تھا، اور وہ اس میں آرام سے بسیں گے اور گھر بنائیں گے اور انگور لگائیں گے اور امن سے رہیں گے۔ جب میں ان کے ارد گرد کے لوگوں پر جو ان کی حقارت کرتے تھے فتویٰ جاری کروں گا، اور وہ جانیں گے کہ میں ہی خداوند ان کا خدا ہوں۔